अमलियात करने से जो निष्पत्ति रूहानी होती है ना वो सल हो जाती है। निष्पत्ति रूहानी वो सल हो जाती है, यानी आमिलीन की निष्पत्ति नहीं रहती। दादा उनकी जो आमिलीन होते हैं उनकी उनका सारी मेहनत और उनका सारा जोर बस अपने वजायफ पर होता है, न जमात की नमाज, शरीयत और सुन्नत के अहकाम पर नहीं होता। बहुत बड़ा धोखा है। और सारा जोर उनका होता है कि बस अपने वजायफ पूरे करो, कई कई घंटे पढ़ना पड़ता है उनको, ऐसा नहीं क्योंकि पहले तो इसलिए पढ़ते हैं कि जरा कुछ मिल जाए, और बाद में इसलिए पढ़ते हैं कि अपनी जान बचाने के लिए, उनको जान बचाने के लिए पढ़ना पड़ता है। क्योंकि ज़ाहिर बात है जब किसी के साथ अगर जिन है वो भी एक मखलूक है ना, अगर आप किसी को मखलूक को ईजा देंगे तकलीफ देंगे, या जिनों में भी तो एम की एम होगी, आपने उसको छेड़ दिया, वो के भत्ता मांग रहा है आपने उसको छेड़ दिया, फिर वो पीछे पड़ जाएंगे। वैसे भी वो तो सारे बैठे ही लंदन में, आपकी पहुंच से बाहर है ना, सब पहुंच से बाहर है, हमें तो ऐसे नजर नहीं आते। तो फिर वो गार बात है, किसी को अजियत दी, किसी को तकलीफ दी, किसी जब मामला किया अपनी ताकत का जोर दिखाया, फिर उसके बाद वो पीछे खानदान वाले पीछे पड़ जाते हैं। तो उनको अपनी जान बचाने के लिए घंटों पढ़ना पड़ता है, सारा मेहनत उनकी इस पर, न कुरान पाक के, न हदीस, न शरीयत के, न सुन्नत के। उनकी आमली जो रूहानी जिंदगी है ना, जो रूहानी जिंदगी जिसको कहते हैं ना कि बंदे का अल्लाह से ताल्लुक रूहानी जिंदगी, इसका नाम है ये, अमलियात का नाम रूहानी नहीं है। क्योंकि वो सारा धंधा तो पेट के लिए करते, वो सारा तो जोर वो पेट के लिए। इसलिए हमारे जो अकाबिर ने जो ये अमलियात का काम किया, तावीज वगैरह का काम किया, वो पेट के लिए नहीं किया उन्होंने। हमारे अकाबिर ने जो काम किया मखलूक की खिदमत के लिए कि चलो किसी को कोई फायदा हो जाए, लेकिन उनकी सारी मेहनत रूहानियत पर होती थी कि शरीयत और सुन्नत पर अमल करें। इसलिए उनकी बातों में वो असर था, उनके तावीजों में वो असर था कि क्या बगैर कोई अमलियात के हुए सारे जीवन उनके तहत होते थे। बल्कि मैंने वाकई सुना था ना, हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह का, एक दफा निकले गली तो देखा एक बड़ा एक शख्स, एक पांव गली के इधर मकान पर, एक पांव इधर मकान पर, वो सर कोई आसमान की तरफ जा रहा था, इतना ऊंचा। हजरत ने देखा ही, अब हम लोगों तो बस काम हो जाएगा। तो अब हजरत को देखे क्या रूहानियत की थी, क्या कल्ब था मजबूत। फरमाया कौन है तू? तो उसने कहा कि मुझे फला शख्स ने भेजा है आपको उठाने के लिए। फरमाया अच्छा, जाओ उसी को उठा के लिया। अब वो गया और जिसने जिसका जो उसका वकील था, जिसका मौकिल बना हुआ था, वो उसी को उठा के लिया है। और वो चिल्ला रहा है, भाई तू मुझे क्यों उठा रहा है, मैंने तो तुझे मेहनत की है। उसने कहा बात ये कि वो शख्स जिस दर्जे का मैं उसकी बात रद्द नहीं कर सकता। देखा आपने साहब, लगा। इसलिए असल वो चीज जो है रूहानियत जिसको कहते हैं ना, ये रूहानियत नहीं है, इसको रूहानी अमलियात इसका नाम रखा है, ये रूहानियत नहीं है। रूहानियत तो शरीयत और सुन्नत में है, ये रूहानियत कहती है, वो रूहानियत नहीं है, शरीयत और सुन्नत में रूहानियत। देखिए ना, अंबिया अलैहिस्सलाम किस पर, जिस्म पर मेहनत करने आते हैं, उनकी जिस्म पर तो मेहनत नहीं, रूह पर मेहनत है ना, उनकी मेहनत रूह पर होती है, कल्ब पर होती है, जो कि रूह से रابطے का बहुत अहम जरिया है। लिहाजा जो आमाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाए हैं वो हमारी रूहानियत के लिए है, उससे रूह में तरक्की होती है। क्योंकि ये जिस्म आरजी है, मिट्टी में चला जाएगा, फिर जो इसके बाद की दुनिया जो जिस्म अता होगा वो सब, वो तो सारा तो रूह पर काम है ना, वो सारा काम रूह पर है। इसलिए किसी ने कहा ना कि पूछा कि सवाल पूछा था ये जिनको जिनों तो आग से बने उनको आग का अजाब कैसे होगा, शैतान आग से पैदा हुआ उसको अजाब कैसे होगा आग का। तो बुजुर्ग ने क्या किया कि एक ईसाई ने पूछा तो उठाया मिट्टी का ढेला और मिट्टी उठा के मार दी। फरमाया तो मुल्ला लोग जो ना ये बहुत शिद्दत पसंद होते हैं। कहने लगा एक तो तुम लोग जो ना तालिबान होते हो बिल्कुल, वो जब बात भी बनी तो मिट्टी उठा के मार दी। सुभानअल्लाह। लेकिन वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, फरमाया तुम्हें तो मिट्टी से क्या असर है तुम्हें, और इतनी जोर से लगी है मुझे चोट, तो किससे पैदा हुआ मिट्टी से, जब मैं तुम मिट्टी से पैदा हुए मिट्टी मैंने तुमको मारी उसने असर किया तो शैतान जो आग से पैदा हुआ आग उसको क्यों ना असर करेगी। सुभान क्या ये है, कितना प्यारा जवाब है। सुभान अल्लाह। इसको कहते हैं उलूम। अगर रूहानियत जो है वो अल्लाह ताला से ताल्लुक का नाम है, और वो रूहानियत में जो बाती है वो शरीयत और सुन्नत पर अमल करने से और तकवा से जाने से यानी गुनाह से बचने से ये रूहानियत कहलाती है। ये जो रूहानियत जिसका नाम रखा है इसका रूहानियत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो रूहानियत को बर्बाद करने वाली चीज है, तबाह होती है रूहानियत। हकीम उम्मत ने फरमाया कोई नस्बत नहीं होती उसकी जो अमलियात का काम करते हैं, कोई नस्बत नहीं होती, रूहानी नस्बत से बिल्कुल खाली होते हैं ये लोग। और जो हमारा काबिल ने क्या, उन्होंने रूहानियत को ऊपर रखा, ये अमलियात किसी की मदद की खातिर से करती और पेट के लिए नहीं करते थे, पैसे वैसे नहीं लेते थे, यहां तो लाखों रुपए मांगते मुंह से मांगते। एक आमिल ने खुद कहा एक साहब को जो कि किसी गैर मुल्क में थे तो उन्होंने कहा कि मुझे 30,000 चाहिए। 30,000 पर बात हुई तो उन्होंने क्या कि 10,000 पाकिस्तानी रुपए भेज दिए। अब आमिल को बहुत गुस्सा आया, उसने कहा तुम अहमक हो, तुम 10,000 की भेजे, कहा आपने कहा था तो मैंने कहा बाकी दे दूंगा 30,000 रुपए। कह रुपए कहा मेरा उसूल है कि जब मैं अमेरिकी से बात करूं तो उससे मुराद डॉलर है, यूरोपियन से बात करूं तो उससे मुराद यूरो है, सऊदी से बात करूं तो उससे मुराद रियाल है, और दुबई वाले से बात करूं तो उससे मुराद दिरहम है। ये हाल है। अब बताए सारा इनकी मेहनत इसी तरह कि बस पैसा बटोरो, लाखों रुपए ले ले, और लोग भी माशाल्लाह इतने जहां जिनसे दीन के काम पर पैसा नहीं निकलता माशाल्लाह हमें लोगों को खूब देते हैं, खूब खूब देते हैं, लाखों लाखों ये बड़े बड़े मालदारों को देखा कि दीन के काम पर पैसा नहीं निकलता फिर जिन निकलवा लेते हैं, लगता है हमें लोगों की छठी जिन से होती है। यह हाल है। और हकीम उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने से पूछा ना कि अगर मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये अमलियात वगैरह के काम पर उजरत लेना कैसा है, तो फरमाया जैसा उजड़ी खाना है, उजड़ी उजड़ी समझते हैं ना, हम उजड़ी समझते हैं ना, हाँ जैसा उजड़ी खाना कि जायज तो है लेकिन कराहियत आती है। किसी मिसाल से समझा कि उलूमत ठीक है, अगर कोई आदमी मामला कर रहा है तो ठीक जायज तो है लेकिन मकरूह कराहियत के घिन सी आती वो जायज है ठीक है उससे कार नहीं सुबह हुआ है। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने पैसा नहीं लिया। मेरे शेख हजरत मोहम्मद सादा उमर खातून के उस्ताद हैं, अब तो इंतकाल फरमा गए, बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़े आलिम थे, वो लेते थे पैसा किसी के सेठ का काम अटकता था ना उनके पास आते, वो लेते थे पैसा, और लेते भी 50 लाख से कम नहीं। फिर उसके बाद वो जब पहले गए तो पैसा रखो पहले दे दे, तो तावीज माशाल्लाह अल्लाह ने उनको बड़ा सब देता, वाह देते बहुत अल्लाह वाले, पैसा रखा तावीज काम, हाथ भी नहीं लगाते थे उस पैसे को। फहरिस्त निकाली, फरमाया जाओ भाई फला साहब को दे दो, ये फला को दे दो, फला को दे दो, जितने जरूरतमंद और गरीब होते थे बस उनकी जरूरत। मौलाना मूसा साहब रूहानी वाजी हमें तो उनसे मुस्लिम शरीफ पढ़ी है ना, सुना वो पहला साल था हजरत का मुस्लिम शरीफ नहीं, शायद अबू दाऊद शरीफ पढ़ी बोला, जवानी थी हजरत की, इमाम मूसा साहब की भी वो, और बहुत बड़े आलिम थे माशाल्लाह, बहुत बड़ी चीज थे बहुत, और तावीज तो उनके ऐसे फट लगते थे कि बस 50 लाख से कम, लाखों रुपए से कम नहीं लेते थे पैसे, और हाथ भी नहीं लगाते थे, बस वो लिस्ट निकाली और जिसके भाई फला की जरूरत, फला की जरूरत, वो सारा भाई उसको दे दो, उसको दे दो, उसको दे दो, उसको ये ऐसे नहीं देते। और वो मां मूसा साहब किसी की दाम में नहीं बैठते थे, किसी मौलवी को मौलाना को खातिर में नहीं लाते थे, लेकिन सियारतुल मुस्लिमीन में मंजर देखा हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह, और वो जो वहां के तलबा हैरान होते थे जब हजरत सियारतुल मुस्लिमीन तशरीफ ले जाते थे ना, मां मूसा साहब सबसे आगे नीचे बैठे होते थे, तख्ते भी नहीं बैठते थे, सबसे आगे बैठे। तो एक दफा हजरत ने फरमाया भी कि हजरत आप ऊपर तशरीफ लाए, बड़े आलिम थे, हजरत भी इकराम फरमाते थे, कहा नहीं हजरत मैं यहां से आपसे फायदा कर इस्तेफादा करूंगा आपसे, बहुत बड़े आलिम थे, मामूली आदमी नहीं थे, इल्मी किसी को खातिर में किसी के पूछ नहीं, लेकिन हजरत की ब्याह में बैठते थे एहतमाम से। फन के लोग फन वालों को फन के लोग फन वाले को पहचानते, यह हजरत का था मकाम। मौलाना हिदायतुल्ला साहब जो कि हकीम उल उम्मत के मुरीद थे, और उनके इंतकाल पर हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दाऊद बरकातुल्लाह ने फरमाया था कि ये एशिया के सबसे बड़े मुहद्दिस थे, इतने बड़े आलिम थे, बांग्लादेश के थे, हकीम उल उम्मत के मरीद थे, और हकीम उल उम्मत के इंतकाल के बाद किसी से बैत नहीं हुए थे, रुजू नहीं किया था। फिर उसके बाद हजरत वाला हमारे शेख और मुर्शिद हजरत मौलाना शाह हकीम मौल अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह से बैत हुए थे। मैंने तो हजरत की ज़ियारत नहीं की माँ हिदायतुल्लाह साहब की, लेकिन जिन्होंने बताया कि ऐसे अदब से बैठते थे हजरत के सामने के बस पाबंदी से, और फना आप लोगों को कैसे क्या मिटाए, कैसे माँ हिदायतुल्लाह साहब इतने बड़े आदमी कैसे मिटे हुए लोग थे, कि वो उनके बाद शागिर्द भी हजरत से बैठे ना, बताया कि हजरत ये ना सर पे तेल लगवाते हैं और ना पैर भी नहीं दबाने देते किसी को। अब आप देखिए फनायत क्या, माँ हिदायतुल्लाह साहब हालांकि हजरत की उम्र कम थी, उम्र में भी बड़े थे, 80 वर्ष उम्र थी, हजरत की उम्र 55-60 के करीब थी उस जमाने में, लेकिन हजरत के हाथ पर बैठे। फन के लोग समझते हैं, तो हजरत में एक आलिम को फरमाया चलो इनको ले जाओ इनके सर पे तेल लगाओ, वो बेचारे बस यूं हुए और कुछ नहीं बोला, क्या हजरत फरमाया ले जाओ, और दूसरे कमरे में ले गए। अब यानी इतना अदब, इसको कहते हैं मिटाना अपने को, कि वो एक शख्स जो किसी को हाथ न लगाने थे, लेकिन शेख के सामने अपने को मिटाना कैसा किस दर्जे का था, समझ लो यार। उस दिन वो वाले में वो कहने लगे हमने खूब सर में तेल मालिश की थी, उस्ताद थे उनके, वो उनके उस्ताद थे। कह रहे लेकिन देखा इसको कहते हैं यानी इत्तबा के, हालांकि कभी हाथ भी नहीं लगाना थे जिंदगी से, बहुत बड़े आलिम थे। तो रूहानियत जो हकीकत असल है वो कल्ब का अल्लाह ताला से जो ताल्लुक है वो है। ये जो अमलियात, ये जो तावीज गंडे करते हैं तो जायज है, जो जायज है वो जायज है, खिलाफ शरीयत कोई काम ना हो, वो अमलियात तावीज कोई खिलाफ शरीयत हो, कुफ्रिया कोई बात ना हो तो वो जायज है। लेकिन उस जायज को भी उनके हमारे बुजुर्गों ने उसको वो नहीं किया, जो किया वो मखलूक की खिदमत, पेट का धंधा नहीं बनाया उसको, पेट की खातिर से नहीं किया। क्योंकि हकीम उम्मत ने फरमाया रूहानी नस्बत बिल्कुल खत्म हो जाती, ऐसे लोग बस अपने ही उसमें पड़े रहते हैं। वो जिस हामिल का मैं जिक्र किया ना, जिसने कहा ना जब मैं अमरीकी से बात करूं तो उससे मुराद डॉलर है, यूरोपियन से बात करूं तो उससे मुराद यूरो है, और दिरहम और रियाल, मैं कहता हूं 50,000 तो इसका मतलब ये नहीं है कि 50,000 पाकिस्तान में बात कर रहा हूं तो ये मुराद नहीं, जिससे बात कर रहा हूं उससे मुराद है। अगर अमरीकी हुआ 50,000 तो उसमें 50,000 डॉलर है। अब वो क्या कह रहे हैं, कह रहे कि कहा उन्होंने कि मुझे बस कानून का खजाना चाहिए ताकि मैं दीन का काम करूं। बताइए साहब, ये भी कोई बात है? नस्बत भी क्या मांग रहे कारून की, जिस पे अल्लाह का आजाब नाजिल हुआ। अब बताइए, ये तो वही है ना, मिसल मा होती है कारून, इन नऊ लदू हजन आदि वकाल अल्लदी नऊतुल इल्म, क्या अल्लाह वालों ने फरमाया वही लकुम, हलाक हो जाओ तुम लोग, कारून का खजाना मांग रहे जिस पर अल्लाह का आजाब नाजिल हुआ, उस कारून का खजाना मांगते, कारून की दौलत है बस, ये दौलत है ना अंदर ही, वही लालच भरी पड़ी है कि कारून का खजाना मिल जाए तो बस। मिसलमा होती है कारून, देखिए कुरान पाक की आयत नहीं, कैसा हो जाए बस, इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, क्या यार उसका तो बड़ा फजल मेहरबानी है, क्या खजाना। इसलिए तो शरीयत कैसी प्यारी चीज है, रूहानियत क्या चीज है कि देखो जो अल्लाह ताला ने जिस हकीम उम्मत ने इसको बड़ा समझाया, जो चीज तुम्हारे इख्तियार में है वो काम करो बस, और जो इख्तियार से बाहर है उसके पीछे मत पड़ो। ये ख्वाब नजर आना, ऊंचा उड़ना और ये सब होना, ये तुम्हारे इख्तियार में नहीं है, तुम्हारा काम है शरीयत और सुन्नत पर अमल करो। अब ख्वाब आए या ना आए, कुछ हो या ना हो, अब देखिए ना उस औरत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि ये तुम इबादत करती हो, तुम्हें इस इबादत का क्या फायदा, समझाया कैसे, सवाल पूछा, क्या मैं तुम अल्लाह की रिजा और खुशी के लिए करती हूं, नतीजे और समरे पर नजर नहीं है। आप सब उसके जवाब से बड़ा खुश हुए, तुम अल्लाह के लिए करे किए जाए, नतीजा सबर उनके उस मांगता रहे उस पर। तो इबादत भी करे महज अल्लाह ताला की रजा के लिए, हमारी तो इबादत भी किसी मतलब की वजह से है, और अगर वो मतलब जन्नत हो, अगर वो मतलब जन्नत हो तो ये मतलब बुरा नहीं है, ये तो फिर बहुत अच्छा है, जन्नत के लिए कर रहा है सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की रिदा हो जन्नत हो एक बात है, लेकिन हमारी इबादत का मकसद न रिजा है न जन्नत है, हमारी इबादत का मकसद है लोगों में कहे बहुत अच्छे बड़े दीनदार है, अगर खोज लगाए तो सारा ही निकलेगा, और हमारी इबादत का मकसद है कि हमें बस इबादत करें, हम खूब नेक दीनदार बने, फिर हमारा बहुत शानदार मकान हो, बड़ा पैसा वैसा हो, जरा टिप एंड टॉप हो, टिप टॉप हो, टिप एंड टॉप हो, जी को या कोई मुसीबत ही ना आए, यानी इबादत का मकसद हमने ये समझा, हम पर कोई मुसीबत ही ना आए, हमें कोई परेशानी ना हो, बस जिसको हम यू देखे वो फड़कने लगे, पिलर को देखे वो सोने का बन जाए, और महबूब को देखे तो कदमों में आ जाए। और हर तमन्ना पूरी हो, हर तमन्ना पूरी हो, ये नहीं है। इबादत का मकसद महज अल्लाह की रज़ा है। उसमें बीमारी भी आएगी, उसमें परेशानी भी आएगी, उसमें गम भी आएंगे, उसमें मुसीबतें भी आएंगी, तो फिर क्या फायदा हुआ? हजरत फरमाते हैं फायदा ये है, अल्लाह वालों का फायदा ये है कि सदमा व गम में मेरे दिल के तबस्सुम की मिसाल, सदमा व गम में मेरे दिल के तबस्सुम की मिसाल जैसे गुंचा घिरे खारों में चटक लेता है। गम और मुसीबत में भी हमारा दिल ऐसे मुस्कुराता है कि जैसे कांटों के दरमियान में फूल खिल जाता है। अब बताइए हजरत ने तो कितनी उर्दू की आला पेश किया, उसका तर्जुमा हम कैसे करना पड़ रहा है बताइए सर। गुंचा घिरे खारों में चटक लेता है, अब क्या करें, चटकना कैसे समझा है? लेकिन फूल खिला, कांटों के दरमियान में कैसे अल्लाह ताला फूल खिलाते हैं। और वो फूल भी कैसा होता है, गुलाब का फूल है, फूलों का बादशाह है। वो समझते तो गुलाब जो है ये असल में इजाफत मखलूबी है, ये है आबे गुल यानी आबरुए गुल। आबरुए गुल ये हजरत की तहकीक, फरमाया गुलाब असल में आबे गुल है यानी आबरुए गुल। सुभान अल्लाह, कैसा अल्लाह ताला की शान कि कांटों के दरमियान में वो फूल खिलाए। ऐसे ही अल्लाह ताला गम और परेशानी और मुसीबतों के दरमियान में, बीमारियों के दरमियान में आशिकों के दिल को ऐसे ही हंसता और मुस्कुराता रखता, खुश है। जिस्म पर जाहिर बजाहिर मुसीबत भी है, बीमारी भी है, परेशानी भी है, लेकिन दिल में जो सुकून है, सुभान अल्लाह। हजरत को देखते थे, हजरत वाला को खुद फालेज बीमार, कमजोरी का गलबा, एक परेशान और मुसीबत वाला है, उससे आप क्या तवक्को करेंगे उस हालत में कि हजरत वाला खुद बीमार। लेकिन होता यह था कि हजरत के लबों पर हर वक्त मुस्कुराहट रहती थी, ये मंजर देखा है ना, हजरत हर वक्त मुस्कुराते रहते थे बीमारी की हालत में, तो जो गम सदा परेशान आता था वो भी मुस्कुराने लगता था। सुहाग ये चीज है कि गुंचा जैसे गुंचा घिरे खारों में चटक लेता है, ये वो चीज है जो अल्लाह ताला अपने आशिकों को अता फरमाते, ये है वो चीज। सुभान अल्लाह, बस यही चीज तकवा से मिलती है, रूहानियत इसका नाम है, रूहानियत इसका नाम है कि अल्लाह ताला के एक लम्हा नाराज न किया जाए, एक लम्हा नाराज न किया जाए, आइनन अलबन कालिबन, न आंख से न दिल से न जिस्म से, एक लम्हा नाराज है। और यही ये दर्स खानकाहों का सदर्स है, दर्स वफादारी, इसका नाम है मेयाराज वफादारी, यानी वफादारी का उरूज, मेराज बमाने उरूज के ना, इसलिए तो मेराज कहते हैं कि आप बुलंदी पर तशरीफ ले गए। सुहाल तो दर से वफादारी यही, और उरूज बंदगी यही है कि बंदा अपने मालिक और पालने वाले को नाराज न करे। और बाकी देखो, माल जो है वो माल से इंसान बड़े से बड़े अस्पताल में जा सकता है, लेकिन सेहत नहीं मिल सकती, सेहत माल से नहीं मिलती। अच्छी दवाई कीमती दवाई खरीद तो सकता है, लेकिन सेहत नहीं खरीद सकता। तुम्हें हकीकत को याद रखना चाहिए, माल से असबाब सुकून ले सकता है लेकिन सुकून नहीं ले सकता। इसलिए इसको खुदा ना बनाना कि जी हमारे जहनों में ये बात एक आम है कि बड़ा जिसका माल देखा, जिसके पास जरा वो देखा, अरे साहब उस पर तो अल्लाह का बड़ा फजल है। अब वो जालिम झूठ बोल के कमाए, धोखे से कमाए, लोगों का पैसा ले, सूद से ले, बस जाहिर को देखा, वाह वाह बड़ा फजल है उस पर, ये दुरुस्त नहीं है। हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं फजल की निशानी क्या है, जिस पे होता है फजल रहमानी, जिस पे होता है फजल रहमानी तर्क करता है कार्य शैतानी। गुनाहों के कामों को छोड़ना, शैतानी कामों को छोड़ना, ये अल्लाह ताला के फजल और मेहरबानी की निशानी है। अल्लाह ताला के फजल और मेहरबानी की निशानी है कि इंसान गुनाहों के कामों को छोड़ दे और अल्लाह ताला की इताअत और फर्माबरदारी के काम करना, ये है फजल और मेहरबानी। और अगरचे उसके पास माल ना हो, माल ना हो अगरचे उसके पास, लेकिन अल्लाह ताला उसको इंशाल्लाह रिस्क के मामले में परेशानी नहीं होगी। अगर मुर्गा ना मिलेगा, चटनी रोटी में वो खुश रहेगा, चटनी रोटी में खुश रहेगा। बल्कि मेरे शेख फरमाते हैं कि हजरत फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत का मामूल था रात दोपहर को 1 बजे खाना खाते, सुबह नाश्ता नहीं करते थे। हजरत फूलपुरी नाश्ता नहीं करते थे, हजरत 1 बजे खाना खाते थे। हजरत फरमाते थे हजरत शेख के साथ में रहता था, मैं भी नाश्ता नहीं करता था, बहुत ऐसी जोरों की भूख लगती थी। तो फरमाया कि हजरत अरहर की दाल खा रहे थे टमाटर की चटनी के साथ, टमाटर की चटनी के साथ अरहर की दाल खा रहे थे। तो थोड़ी देर गुजरी, फरमाया कि हजरत फरमाते मेरा नाम लिया हकीम अख्तर, कि मुझे इसमें बिरयानी का मजा आ रहा है। तो हजरत फरमाते मैंने पूछा कि हजरत दाल में बिरयानी का मजा कैसे? फरमाया इसलिए कि मौला, मेरे मौला मुझे अपने हाथों से खिला रहे हैं। फरमाते मेरे हजरत बात समझ में नहीं आई, वजाहत फरमाए, आप तो अपने हाथों से खा रहे हैं। फरमाते हजरत की आंखों में आंसू आए, फरमाया कि देखो अल्लाह ताला की कुव्वत और कुदरत और ताकत इस हाथ में, क्योंकि अल्लाह ताला का फैसला ना हो तो हाथ तो होगा लेकिन फालिज हो जाए, हाथ हरकत नहीं कर सकता। अल्लाह ताला का हुक्म अगर ना हो तो यह हाथ तो होगा लेकिन हाथ अपनी मर्जी से थोड़ी हिलता है। ये अल्लाह ताला की कुदरत और ताकत कार फरमाया उसमें। हजरत फरमाया कि वो अल्लाह ताला मुझे हाथों से खिला रहे, तो उनकी रजा और खुशी और कुदरत है। यानी आप तसव्वुर करें कि खाना खाते वक्त क्या इस्तेहजार है, तो जिस अल्लाह वाले का खाना खाते वक्त इस्तेहजार होगा उसकी नमाज कैसी होगी? जिसका एक दुनिया का वो काम जिसको खाते वक्त हम बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ते, तो जिस उसका खाने पर ये एहसानी कैफियत है कि अल्लाह ताला मुझे अपने हाथों से खिला रहे, तो नमाज का क्या हाल होगा उसका? हजरत फरमाते कि आखिरी उम्र में जब हजरत की हड्डी टूट गई थी ना कूले की, तो हजरत की कमर की हड्डी जो टूट गई थी तो हजरत को उठाना पड़ता था। हमारे एक दो वाक्य इसमें सुनाता हूं। एक दफा यहां पर कोई हजरत के था एक ताल्लुक वाला शख्स दीनी कुछ, और वो जहाज का मालिक था, पानी के जहाज का मालदार था। तो हजरत वहां उसने दावत दी, तशरीफ लेगा हजरत फूलपुरे, अभी दस्तरखान लगा, अभी खाना शुरू करने लगे थे। तो उसने सवाल पूछ लिया, कि ये उलमा सूद को क्यों हराम कहते हैं? हजरत फरमाते हैं कि हजरत फुरबू ने फरमाया कि मख्तर उठाओ मुझे, सुनना भी गवारा नहीं किया, फरमा उठाओ मुझे। फरमाते बस मैंने बगल में हजरत के हाथ दिए और फौरन खड़ा कर दिया। तो उसने कहा हजरत क्या हुआ? मैं, तुमने सवाल कैसे पूछा? तुम सूद लेते हो? उसने कहा हजरत मैं कसम खाता हूं मैं सूद नहीं लेता। सुजहन में इश्काल था, कोई बात होगी। तो फिर उसने पांव पकड़ के माफी मांगी, फिर हजरत बैठ गए। ऐसे मुस्तनी लोग, यानी जरूर बराबर परवाह नहीं कि क्या होगा, नाराज होगा, कौन है, रिश्तेदार है, क्या है, ताल्लुक है, कुछ नहीं। इनकी नजर में अल्लाह ताला का ताल्लुक है। मैंने तुम्हारे सहन में सवाल आया कैसे? और हजरत फरमाते दूसरी अजीब बात यह थी कि हजरत के वैसे उठाना पड़ता था, हजरत नमाज में भी ये होता था कि हजरत को फरमाते मैं खड़ा कर देता था हजरत फुपूरी को, फिर उसके बाद पूरी नमाज रुकू सजदा हजरत करते थे और कोई सहारा नहीं लगता, बस एक दफा शुरू में उठाना पड़ता था। क्या लोग हैं तुम, क्या इतने मोहताज के उठाना पड़ रहा है? और फरमा पूरी नमाज बगैर सहारे के पढ़ते थे, रुकू सजदा पूरा करते थे, बस एक दफा उठाना पड़ता था। क्या लोग हैं बताओ। तो जिनके खाने का यह हाल है, जिनके खाने का यह हाल है कि खाने में ऐसा नहीं, कैफियत कैसी कि अल्लाह ताला मुझे अपने हाथों से खिला रहे हैं, क्या लज्जत होगी। देखिए ना, महबूब अपने हाथों से लुकमा दे, ये इस्तेजार हो, ये चलो ये इस्तेजार हो, महबूब खाना भेज दे, चलो और कहता हूं माशूका खाना भेज दे, खाने में कैसा मजा आएगा। हज़रत वाला रहमतुल्लाह अलैह इसको फरमाते थे, फरमाते देखो एहसानी कैफियत है, अगर मजनू को सारा आलम की हसीनाएं, कोई बिरयानी भेजे, कोई कबाब भेजे, कोई नहारी भेजे, वो पंजाब की माशूका ने पावे भेज दिए, और इसी किस्म हर कोई बढ़िया चीज ऐसे भेजे, और उसकी जो अपनी असली लैला है, जो उसकी लैला है, वो उसके लिए चटनी रोटी भेज दे, तो मजनू को किसमें मजा आएगा? क्यों? देखो ना, क्यों? सिर्फ मोहब्बत की वजह से, कि उसको जो मोहब्बत लैला से है वो औरों से नहीं है, तो उसको कैसा मजा आएगा। तो ऐसे ही जिस बंदे को जब अल्लाह ताला से मोहब्बत हो जाती है, अल्लाह ताला से ताल्लुक पैदा हो जाता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों उसको पैवन लगे कपड़ों में भी मजा आता है, उसको फिर चटनी रोटी में भी मजा आता है। और जिसको अल्लाह ताला से मोहब्बत नहीं है, उसको तो आप सारे दुनिया की बादशाहत भी दे दे वो राजी नहीं है, उसको मजा ही कहीं नहीं आ रहा, खुशी कहीं नहीं, उसको कोई खुशी नहीं। पर अल्लाह ताला की मोहब्बत ऐसी चीज है, सुभान अल्लाह, कि उसको तो फटे हुए कपड़े में भी मजा आएगा, अपनी झोपड़ी में भी उसे शाही महल से पढ़कर मालूम होगी। कैफियत है कि नहीं? सुभान अल्लाह। इसी तरीके से अल्लाह ताला की रिजार खुशी जिसके साथ हो जाए, उसकी बंदगी उसकी जिंदगी, क्या लज्जत और क्या मजा होगा। उसको तो बीमारी में भी मजा आएगा, क्यों? उस बीमारी में भी तो महबूब के कुछ राज और न्याज होंगे ना। तमाशाए मक्तल को आए जो वो, ख्वाजा साहब फरमाते हैं, कहा अकबर इलाहाबादी का शेर, तमाशाए मक्तल को आए जो वो, तड़पने की लज्जत सिवा हो गई। कि जिसके लिए कत्ल किया जा रहा, जिसको छेड़ा था उसी के लिए कत्ल हो रहे, और मक्तल कत्ल गाह को कहते हैं जहां कत्ल किया जाता है। तो जिसके लिए कत्ल हो रहे थे वो खुद देखने आ गया, चलो हम भी तो देखें, मजा चखेगा भी है। तो वो मजा चखाने के लिए आया और ये मजा चख रहा है। अब इस उर्दू को हम तर्जुमा कर सकते, क्या अब मजा चखेगा? वो मजा चखा रहा है और ये मजा चख रहा है, तो कैसा आलम होगा उसका। या जिसके लिए कत्ल हो रहे थे, चलो खुद तमाशा देखने आया, तो तमाशाए मक्तल को आए जो वो, तड़पने की लज्जत सिवा हो गई। बीमारी हमारी शिफा हो गई, बीमारी हमारी आयादत हमारी शिफा हो गई, आयादत हमारी शिफा हो गई और बीमारी हमारी दवा हो गई, आयादत हमारी शिफा हो गई, आयादत हमारी शिफा हो गई और बीमारी हमारी दवा हो गई। लो जी हम बीमार हुए तो वो बीमारी कैसी दवा बनी कि महबूब आयादत को आ गया। सुभान अल्लाह। हदीस शरीफ में आता है कि ऐना इंदल मुनकर सदे कुलूबुहुम, वो मरीज का जो दिल टूटा हुआ होता है ना, टूटे हुए दिलों में रहते मरीज, इसलिए मरीज जो है जिसको मरज हो वो गुनाह के काम में ना लगे, इन्हें वीडियो गेम खेल रहा है या बेहुदा नॉवेल और पे चीजें पढ़ रहा है, कोई दीन की किताब ही पढ़ ले, अगर है ऐसा दीन की किताब पढ़ ले, किसी अच्छे काम में लगे। क्यों? क्योंकि ये बीमारी उस पर रहमत है, उस बीमारी को रहमत बनाने की फिक्र करें। अल्लाह ताला अपना फर्ज फरमाए, अपनी मोहब्बत, अपना कुर्ब, अपना ताल्लुक, अपने कर्म से हम सबको नसीब फरमाए। वाखिर दुआवान अल्हम्दुलिल्लाह। लाइक करो यार।